से भी इसलिए हम दिखाना चाह रहे हैं कि जो आज हमारे और आपके पास ये सुसमाचार पहुंचा है, इस सुसमाचार को पहुंचाने के लिए बहुत से लोगों ने जान दी है, लेकिन वो प्रभु को नहीं नकारे हैं, लेकिन विषम परिस्थितियों में वह सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, चाहे कैसी भी उनको ताड़ना की दी जाए, लेकिन वो प्रभु को नहीं नकारे। प्रियो, हमको और आपको आज अपने जीवन के बारे में जब सोचना है कि जब हम ये पत्री पढ़ते हैं तो बहुत समान शब्द लगते हैं, लेकिन जो लोगों ने विरोध को सहा है, जिन लोगों के सामने ऐसी परिस्थिति आई है, आप महसूस कर सकते हैं इस वीडियो के द्वारा कि किस प्रकार से लोगों ने सुसमाचार के लिए अपने जान को दे दी और वो प्रभु के लिए स्वयं को बलिदान कर दिया, लेकिन प्रभु के नाम को उन्होंने नकारा नहीं। और आज हम और आप जो इस पत्रस की पत्री को देखते हैं तो इस बात को पाते हैं, और पत्रस इस बात पर जोर देता है कि जो मसीही है, जो विश्वासी है, चाहे जैसी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन उनके मध्य में वो चाहता है कि वो विश्वास में स्थिर रहें। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस पत्री को ये पत्रस लिखता है, क्योंकि उस समय और कोई ऐसा साधन नहीं था जो किसी तरह से लोगों तक बातचीत करे, लेकिन चिट्ठी के माध्यम से अपनी बातों को लिखने के द्वारा और उनको विश्वास में मजबूत करने का ये प्रयास करता था, और ये सारी पत्रियों को उसने लिखा। और जब इन बातों को देखते हैं तो पत्रस का जो मुख्य उद्देश्य था ये लिखने का कि वो चाहता था कि जो विश्वासी हैं, जो मसीही जन हैं, वे इस महत्वपूर्ण घटनाओं को, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वे दीन होने के महत्व को तथा सताव के मध्य में खड़े रहने का कारण ठहरने पाए। वो चाहता था कि जब ऐसी परिस्थिति आए तो लोग परेशान न हो, हताश न हो, परंतु वे प्रभु में दृढ़ रहें। इस बात के लिए इस पत्री को लिखने के द्वारा वो इस बात को बताना चाहता है। और प्रियो, जब इस पत्री को लिखता है तो आप पहले ही पद में देखे होंगे, जब हमने पिछले दिनों में बाइबल अध्ययन लिया था, तो यहाँ पर पहला पद को पढ़िएगा तो यहाँ लिखा है कि यीशु मसीह के प्रेरित पत्रस की ओर से तुम परदेशियों के नाम पुंतुस, गलातिया, कंपुदकिया, एशिया, बिथुनिया में तितर बितर के जो हो रहे हैं, उन लोगों को ये पत्र लिख रहा है। और ये चार पांच स्थान हैं ऐसे जिन स्थानों पे ये चिट्ठी के द्वारा विश्वासियों को दृढ़ कह रहा है। आपको मालूम होगा उस समय रहे होंगे, तो नहीं तो यहाँ देख सकते हैं जो नीली लाइन से है, चार पांच स्थान है। जो पहला क्या है आप सामने देख सकते हैं, पेंतुस है, गलातिया है, कंपुदकिया है, एशिया है और बिथुनिया है। ये स्थानों पर ये पत्रस इस पत्र को लिखने के द्वारा विश्वासियों को दृढ़ करना चाहता है। और प्रिय भाइयों और बहनों, हम आज इस बात को जो आगे चल के 10 पद से आगे 21 पद में देखेंगे, इस बात को देखेंगे कि एक विश्वासी का जीवन किस प्रकार होना चाहिए और एक विश्वासी के लिए क्या क्या अनिवार्य चीजें हैं। और जब पहले खंड में हमने देखा था तो इस बात को देखा था कि एक विश्वासियों के पास दुखों के मध्य में क्या है, आशा है। लेकिन जब यहां पर हम देखते हैं तो आज जो मुख्य विषय है, जो मुख्य बात है जिस पर हम आपका ध्यान लाना चाहेंगे इन 10 पद से 21 पद के मध्य में, परमेश्वर की योजना है हमारे उद्धार के लिए, या यूं कह सकते हैं हमारे उद्धार के लिए परमेश्वर की योजना है, इसलिए हम अपना जीवन उसके भय में जिए। जो मुख्य बात है, परमेश्वर की योजना हमारे उद्धार के लिए है, इसलिए हम अपना जीवन उसके भय में जिए। तो यहां पर हम देखते हैं, आप अगर नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं, परमेश्वर की योजना हमारे उद्धार के लिए, इसलिए हम अपना जीवन उसके भय में जिए। जब 10 पद को देखते हैं, कहता इसी उद्धार के विषय में उन नबियों ने सावधानी पूर्वक खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह को जो तुम पर होने वाला था भविष्यवाणी की। ये कौन सा उद्धार है? अगर पीछे खंड में जाएंगे तो आपको मालूम होगा, यहाँ पे 5 पद में कहता तुम्हारी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ द्वारा विश्वास से उस उद्धार के लिए की जाती है जो अंतिम समय में प्रकट होने वाला है। प्रिय भाइयों, कई बार हम इस बात पर विचार करते हैं और हम जानते हैं कि जिस दिन हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं एक रीति से हमारा उद्धार हो गया, लेकिन हम जब तक इस संसार में हैं हम प्रभु के पीछे चलते रहेंगे, और जब एक दिन प्रभु के पास मिलेंगे, प्रभु से हमारा आमने सामने मिलन होगा, तब उस दिन हम देखते हैं कि वो अंतिम समय में जो उद्धार है वो हमको परमेश्वर देगा। कितनी अद्भुत और आनंद की बात है जब हम आज उसके परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं और इस बात को जानते हैं कि वो प्रभु, वो यीशु हमसे प्यार करता है। लेकिन एक दिन हमारे और आपके सामने ये समय आएगा कि जिस प्रभु को आज हम देखते नहीं हैं, सिर्फ वचनों में पढ़ते हैं, लेकिन उस प्रभु के सामने हम और आप रहने पाएंगे। ये कितनी अद्भुत और आनंद की बात है। जब इस बात को हम सोचते हैं, जब हम इस संसार में हैं, तो चाहे जैसा घोर विरोध हो, चाहे जैसा अत्याचार हम पर हो, चाहे जैसी परिस्थिति क्यों ना हो, हम प्रभु के साथ चलने पाएंगे। प्रिय भाई बहनों, हम आज इस बात को यही देते हैं कि हजारों साल पहले पत्रस इन लोगों को, इस तितर बितर लोगों को पत्र लिखा कि किसी प्रकार से ये विश्वासी लोग विश्वास से भटक न जाएं। आज जब हम देखते हैं, हमारे और आपके जीवन के जांचने के लिए अवसर है कि हम जो यीशु मसीह के कहलाते हैं, जो हम उसके विश्वासी कहलाते हैं, मेरा और आपका विश्वास किस प्रकार का है। यदि हमारे और आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ जाए तो हम क्या करेंगे, हमारे और आपके लिए सोचने की बात है। और जैसे कि यहां पर जब देखते हैं, तो अगर भविष्यवाणी की, तो अगर हम ज्यादा समय ना लेते हुए, लेकिन हम एक के बाद देखते हैं कि जब यशायाह नबी के बारे में देखते हैं, जब पुराने नियम में पढ़ते हैं, तो बहुत से भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की और उस अनुग्रह अर्थात मसीह के द्वारा जो उद्धार विश्वास करने वालों के लिए, वो चाहे यहूदी हो चाहे अन्य जाति हो, हर एक को वो मिलने के लिए प्रतिज्ञा करता है। जो लोग उस पर विश्वास करेंगे उसको परमेश्वर उद्धार देगा, चाहे वो किसी भी जाति से क्यों ना हो। यहां पर कहता है चाहे वो यहूदी हो चाहे गैर यहूदी हो। हजारों साल पहले भविष्यवाणियां हुई उस सुसमाचार के लिए। और फिर आगे हम देखते हैं कि जब मरकुस 13 अध्याय के 10 पद में पढ़ते हैं, तो वहां पर इस बात को पाते हैं कि अवश्य पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। आरंभ से ही परमेश्वर की योजना थी कि समस्त जातियों को ये सुसमाचार का प्रचार किया जाए कि जो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था अपनी महिमा के लिए, अपनी आराधना करने के लिए। लेकिन पाप के कारण वो परमेश्वर से संगति वो टूट गई। लेकिन परमेश्वर हमेशा से इस बात के लिए प्रयास में था कि जो मनुष्य और परमेश्वर की संगति टूटी है वो किसी न किसी तरह से जोड़ने के लिए वो प्रयास कर रहा था। और उसी योजना में होकर हम इस बात को देखते हैं कि वो परमेश्वर ने हमसे और आपसे ऐसा प्यार किया कि अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया कि मेरे और आपके पापों के लिए यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गया, कि जो हमने और आपने पाप किया था, जिसकी कीमत हम चुका नहीं सकते थे, वो मेरे बदले इस संसार में आ गया, मेरे बदले वो पवित्र जीवन जिया, मेरे बदले वो सारी कीमत को चुका दिया कि हम और सिर्फ उस पर विश्वास के द्वारा उस संबंध को जो आरंभ में परमेश्वर के साथ मेरा था वो पुनः जुड़ जाए। इसी बात को आगे देखते हुए जब हम रोमियो में पढ़ते हैं, तो ये सारी भविष्यवाणियां इस बात को हम दर्शाती हैं कि परमेश्वर हमेशा से पहल करता आया कि मनुष्य किसी प्रकार से परमेश्वर से दूर ना होने पाए। रोमियो 9 अध्याय के 25-26 में लिखा है कि जैसा वह होशे की पुस्तक में भी कहता है कि जो मेरी प्रजा ना थी उसे मैं अपनी प्रजा कहूंगा, जो मेरी प्रिया ना थी उसे मैं अपनी प्रिया कहूंगा। और ऐसा होगा जहां उसने यह कहा गया था वह जीवित परमेश्वर की संतान कहलाएंगे, कि जो परमेश्वर की प्रजा बनने के लायक नहीं थी। आज अगर हम सोचें तो हम जानते हैं कि मेरी स्थिति क्या है, आपकी स्थिति क्या है, आप अपने बारे में जानते हैं। अगर परमेश्वर के सामने आप खड़े हो तो क्या इस बात को कह सकते हैं कि मैं आपकी संतान बनता हूं या मैं आपकी संतान हूं? मैं अपने आप में नहीं कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर की उस दया के द्वारा हमको और आपको अपनी संतान बना लिया। क्योंकि हम उसकी दृष्टि में तो क्या थे? पापी थे। हम किसी प्रकार से उसकी संतान बन ही नहीं सकते थे, हम किसी प्रकार से उसके करीब जा नहीं सकते थे। लेकिन परमेश्वर ने अपनी दया में होकर हमारे और आपके ऊपर ये अनुग्रह किया कि हम उस पर विश्वास करें और उस जीवन को जो परमेश्वर की सनातन योजना में है वो उद्धार को प्राप्त कर लें। क्योंकि आज संसार में हम जब देखते हैं तो लाखों हजारों लोग, हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि जब हम इस संसार से जाएं तो हम कहां जाएं? स्वर्ग में जाएं। हर एक व्यक्ति यही चाहता है। लेकिन प्रिय भाई बहनों, हमको और आपको इस बात को मालूम है, बहुत से जन हैं जिनको नहीं मालूम है। क्योंकि हमको और आपको इस बात को मालूम है क्योंकि प्रभु ने अपने वचन में कहा यीशु कि मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। और ये आशा हम सिर्फ विश्वासियों के पास है, संसार के लोगों के पास नहीं है। हमको और आपको अपने जीवन के बारे में सोचना है कि परमेश्वर ने हमको और आपको क्यों अपनी संतान बनाया है, क्यों चुना है। 12 पद में कहता है, उन पर यह प्रकट किया गया, इन बातों में अपनी नहीं परंतु तुम्हारी सेवा करते थे, जिन बातों का समाचार अब तुम्हें उन लोगों द्वारा मिला जिन्होंने स्वर्ग से भेजे गए पवित्र आत्मा की प्रेरणा से तुम्हें सुसमाचार सुनाया। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां आज तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है, लेकिन हमको और आपको सोचने की बात है, परमेश्वर की दया हुई है कि जो लोग इस हॉल में बैठे हैं किसी न किसी माध्यम से उस परमेश्वर को जानते हैं, इस यीशु के बारे में जानते हैं। जो लोग पहली बार आए हैं वे और जान सकते हैं कि यीशु आपसे प्यार करता है, यीशु आपके लिए संसार में आ गया और यीशु ने आपके पापों के लिए अपने आप को क्रूस पे बलिदान कर दिया, कि आप यदि उस पर विश्वास करेंगे, आप उसके पीछे चलेंगे तो आप अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। संसार में आशा नहीं है, संसार में तो कहीं भी जाएंगे तो आपको कोई ये निश्चयता नहीं दिलाएगा कि तुम मेरे पास आओ मैं तुम्हें स्वर्ग ले जाऊंगा, तुम मेरे पास आओ मैं तुम्हें ले जाऊंगा, कोई निश्चित आशा नहीं दिला सकता। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्यों? वो परमेश्वर मेरे और आपसे प्यार करता है, वो नहीं चाहता कि हम और आप इस संसार में नाश हो जाएं, वो नहीं चाहता है कि हम और आप इस संसार का जीवन उससे दूर होकर बिताएं, वो चाहता है कि हम और आप उस परमेश्वर को जानें, उस परमेश्वर पे और भरोसा करें, उस परमेश्वर से लिपटे रहें और उसकी महिमा के लिए अपने जीवन को बिताएं। यहाँ पे आखिरी 12 पद में यहाँ इस प्रकार लिखा है कि ये जो समाचार सुनाया गया, स्वर्गदूत भी इन बातों को देखने की बड़ी लालसा करते थे। मसीह का सुसमाचार कितना अनोखा है, पवित्र आत्मा का कार्य कितना अद्भुत है कि स्वर्गदूत भी इन बातों की देखने के लिए उत्सुक रहते थे। लेकिन ये सुसमाचार मेरे और आपके सामने और प्रदर्शित कर दिया गया और खुलासा हो गया मेरे और आपके लिए। यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के लिए संसार में आ गया, मेरे और आपके पापों के बदले वो अपने आप को क्रूस पे बलिदान कर दिया कि हम और आप उस पर विश्वास करने के द्वारा जीवन को प्राप्त कर लें। और इसी आशा में होकर जब आगे 13 पद से लेकर 21 पद में देखते हैं तो यहां पर हम तीन बातों को देखते हैं कि हमको और आपको ध्यान रखना है कि क्या ये पत्रस हमसे और आपसे अपेक्षा करता है, क्या ये विश्वासियों को पेशा करता था कि जो ये तितर बितर के लोग रह रहे हैं उनसे ये क्या चाहता था। वो उसकी इच्छा यही थी किसी भी स्थान पर रहें, कहीं भी रहें, लेकिन वो प्रभु में बने रहें। जब 13 पद को यहां पर पढ़ते हैं तो कहता है, अतः कार्य करने के लिए अपनी बुद्धि की कमर कसकर आत्मा में संयमित हो जाओ, अपनी पूरी आशा उस अनुग्रह पर रखो जो तुम्हें यीशु मसीह के प्रकट होने पर दिया जाने वाला है। यहां पर जो पहली बात देखते हैं कि एक विश्वासी को अपनी पूरी आशा परमेश्वर पर रखनी है, एक विश्वासी को अपनी पूरी आशा परमेश्वर पर रखनी है। आप देख रहे थे कि चाहे उनको जला दिया गया हो, चाहे उनको शेरों के सामने डाल दिया गया हो, चाहे जो कुछ भी दुख दर्द रहा, लेकिन उन्होंने अपने परमेश्वर को नकारा नहीं, उन्होंने परमेश्वर के लिए जान को दे दी। ये बात मेरे और आपके लिए आज कहता है कि मैं और अपने आप को जान सके कि जब ऐसी परिस्थिति होती है तो हम किस पर भरोसा रखते हैं, उस परमेश्वर पर या समाज के प्रशासन पर या हमारी बड़ी पहुंच है कोई नेताओं पे या किसी बड़े अधिकारी पे। यदि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, यदि हम अपने आप को प्रभु के पीछे चलने वाला कहते हैं तो हमको आपको ये ध्यान रखना है कि हमें अपनी पूरी आशा अपने परमेश्वर पर रखनी है, क्योंकि वही है जो हमें संपूर्णति से बचा सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उनसे मत डरो जो शरीर को घात करते हैं, लेकिन उससे डरो जो शरीर और आत्मा को दोनों को घात करता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमें इस बात को ध्यान है, इस संसार में विरोध होगा, कठिनाइयां होंगी, सिर्फ हमारे शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं, सिर्फ हमारे को दुख पहुंचा सकते हैं, हमारे शरीर में पीड़ा पहुंचा सकते हैं, लेकिन चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, ये जीवन तो एक न एक दिन नष्ट हो जाएगा। चाहे आज हम 20 साल के हों, हो सकता हमारी मृत्यु कल हो जाए, चाहे हम 50 साल के हों, हमको नहीं मालूम कि ये जीवन हमारा कब तक है, लेकिन हमको और आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक इस संसार में है हमको अपना भरोसा अपनी आशा उस परमेश्वर पर रखनी है, जो यहाँ पर 13 पद में कहता है कि अपनी पूरी आशा उस अनुग्रह पर रखो जो तुम्हें यीशु मसीह के प्रकट होने पर दिया जाने वाला है। क्या मिलेगा, कल्पना करिए, जब प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं तो कहता है वो दुख के आंसू यीशु पोंछ डालेगा। प्रिय भाई बहनों, इस संसार में कितना भी दुख हो सकता है, कितनी भी गरीबी हो सकती है, कितनी भी तंगी में हमें जीवन व्यतीत करना पड़ सकता है, कितनी भी बीमारी में हमें तकलीफ उठाना पड़ सकता है, लेकिन हम इस संसार में हताश और निराश ना हो, क्योंकि हमको और आपको परमेश्वर एक ऐसा जीवन देगा जो कभी ना मिटेगा। इस कारण कहता है कि अपनी पूरी आशा उस परमेश्वर पर रखो। एक विश्वासी को अपनी पूरी आशा परमेश्वर पर रखनी है, और जब हम उस पर आशा रखेंगे तो हमारे सामने कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, हम इस बात से डरेंगे नहीं, हम इस बात से हिचकिचाएंगे नहीं कि कल मेरा क्या होगा। हम अपने कल के बारे में नहीं जानते हैं, कि मैं अपने कल के बारे में नहीं जानता हूं, लेकिन मैं उस परमेश्वर को जानता हूं जो मेरे कल के बारे में जानता है, और वो परमेश्वर हमसे और आपसे प्यार करता है। वो परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी आशा उस पर रखें। हमको और आपको अपने जीवन के बारे में सोचना है। जब ऐसी दुख परेशानी, चाहे राजनीतिक स्थिति हो, चाहे पारिवारिक स्थिति हो, चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे बीमारी की दशा में हो, जब ऐसी स्थिति आती है तो हम किस पर आशा लगाते हैं? जब हम परमेश्वर पर अपनी आशा लगाए रखेंगे, हम उन परिस्थितियों का सामना बहुत आसानी से कर पाएंगे। क्यों? उन सारी बातों में प्रभु हमारे साथ है। लेकिन हमको और आपको इस बात को ध्यान देना है कि हम क्या उसके साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, क्या मैं उसके साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। वो परमेश्वर कहता है कि ना तो मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा, ना कभी छोड़ूंगा। लेकिन कई बार हमको और आपको सोचना है, अगर कल कोई आ जाए, अच्छा तुम चर्च क्यों गए थे या वहां क्यों जाते हो, तो हमारा और आपका प्रत्युत्तर क्या होगा? क्या हम इस बात को कहने पाएंगे कि हम मसीही हैं, हम मसीह पर विश्वास करते हैं, हम मसीह की आराधना करने के लिए जाते हैं, या फिर हम चुपके से बैठ जाएंगे, अरे कोई जानने न पाए मैं कहाँ गया था रविवार को, हमारे पड़ोसी जानने न पाए संडे को कहाँ जाते हैं। क्या मेरी और आपकी आशा उस जीवित परमेश्वर पे है? अगर उस पर आशा है तो चाहे हमारे पड़ोसी हो, चाहे हमारे रिश्तेदार हो, चाहे हमारी मौसी नानी चाची कोई भी क्यों ना हो, चाहे जितना हमें फोन पे हालचाल पूछे, चाहे जितना जो कुछ कहें, हम उनसे नहीं डरेंगे। हम कह सकेंगे कि हाँ, हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, वही है जो मेरे जीवन का उद्धार करता प्रभु है, वही है जो मेरे पापों को क्षमा करता है, इस संसार में और कोई नहीं है। क्योंकि परमेश्वर के वचन प्रेरितों काम 4:12 में लिखा है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम दिया ही नहीं गया जिसके द्वारा हम उद्धार पाए। अगर नाम है तो सिर्फ यीशु मसीह का नाम है जिसके द्वारा हम उद्धार पाएंगे। क्या इस बात पर हम और आप भरोसा करते हैं? यदि इस बात पर हम भरोसा करते हैं तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर से यही प्रार्थना करें कि जो मेरा और आपका भरोसा है, ये भरोसा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन हम उसमें हताश ना हो, हम उसमें निराश ना हो। 14-16 के मध्य में एक विश्वासी का जीवन परमेश्वर की पवित्रता में बढ़ता जाएगा। एक विश्वासी का जीवन परमेश्वर की पवित्रता में बढ़ता जाएगा, जो 14 से लेकर के 16 के मध्य में यहाँ पर हम इस बात को पाते हैं। 14 को जन पढ़िएगा। एक विश्वासी का जीवन पवित्रता में बढ़ता जाएगा। यहाँ कहता, आज्ञाकारी बच्चियों के सदृश अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के अनुसार आचरण ना करो। हमको और आपको अपने जीवन को जांचना है। उस दिन को याद करिए जब आप प्रभु को नहीं जानते थे, आपका जीवन किस स्थिति में था, आप क्या क्या करते थे, और यदि उसी प्रकार की कोई भी ऐसी बात अगर आज भी हमारे और आपके जीवन में है तो हमको और आपको सोचना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि आज्ञाकारी बच्चों के सदृश अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के अनुसार आचरण ना करो। हमारी पुरानी अभिलाषाएं क्या थी, हमारा पुराना जीवन क्या था? हम तो संसार में भटक रहे थे, उन ना सुनने वालों के पीछे हम भटक रहे थे, जो हमारी आवाज कभी सुन नहीं सकते थे, जो हमारे लिए कुछ कर नहीं सकते थे, हम उसमें अपना जीवन व्यतीत करते थे, हम चाहे अपना जीवन नशा में बर्बाद करते थे, लेकिन परमेश्वर हमको और आपको उस दशा से चुन करके लेकर आया है। हमको और आपको अपने जीवन को जांचना है। कहता, अपनी पुरानी अभिलाषाओं के अनुसार आचरण ना करो। हमको और आपको एक दूसरे के जीवन के बारे में कहने की जरूरत नहीं है। हम अपने जीवन के बारे में खुद जानते हैं कि हमारा किस स्थिति में है हमारा जीवन। लेकिन परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम उन पुरानी अभिलाषाओं में जीवन व्यतीत ना करें। परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। उस कीमत को इस संसार की किसी भी चीज से तुलना नहीं कर सकते हैं। और परमेश्वर यही चाहता हमसे। अगर 1 कुरिन्थियों 15:34 पढ़ेंगे तो लिखा है कि धार्मिकता के लिए सजग हो जाओ और पाप न करो, क्योंकि कुछ लोग परमेश्वर को बिल्कुल नहीं जानते। मैं कहता हूं यह तुम्हारे लिए लज्जा की बात है। हम अपने जीवन की वास्तविकता को जानते हैं। कई बार हम ये कह सकते हैं, हम तो हर संडे को आते हैं चर्च, हम हर एक मीटिंग में जानते हैं, लेकिन मेरे जीवन की वास्तविकता क्या है? अगर हम परमेश्वर से दूर हैं, अभी भी किसी प्रकार की उन सांसारिक चीजों की हमारे जीवन में आदत है, तो हमारे और आपके लिए एक लज्जा की बात है। हमको और आपको सोचना है कि हम इन बातों को और अपने जीवन में गंभीरता से ले सकें। और जब पहला पत्रस 4 अध्याय के 1 और 1 से आगे पद को पढ़ते हैं तो इस बात को पाते हैं, कहता है, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में दुख उठाया तो तुम भी इसी अभिप्राय से हथियार धारण कर लो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। इसलिए शरीर में अपना शेष जीवन मनुष्यों की अभिलाषा में नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो, क्योंकि अतीत का जो समय तुमने विषय भोग कामुकता पियक्कड़पन रंगरेलियां मद्यपान गोष्ठियां तथा घृणित मूर्ति पूजा में गंवाकर अन्य जातियों के इच्छा अनुसार कार्य किया है वो पर्याप्त है। हमारे जीवन की जो हमने किए हैं कार्य वो परमेश्वर के सम्मुख हम खड़े होंगे तो किसी प्रकार से हम उसके सामने खड़े नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमने और आपने तो पाप किए हैं। रोमियो 3:23 में लिखता है पौलुस कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए हैं। हम सब ने तो पाप किया है, उसी पाप के कारण परमेश्वर से दूर हो गए। लेकिन 6:23 में जब हम इस बात को पढ़ते हैं तो कहता है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। क्या हम उस अनंत जीवन को पाना चाहते हैं? क्या उस अनंत जीवन के लिए हम जीना चाहते हैं, या उस संसार की तमाम बुरी अभिलाषाओं में फिर से अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है तुम अपना जीवन संसार के लिए नहीं, अपना जीवन परमेश्वर के लिए बिताओ। प्रिय भाई बहनों, हमको और आपको अपने जीवन के बारे में सोचना है कि मेरे और आपको जीवन परमेश्वर ने क्यों दिया है। संसार में तो बहुत से लोग हैं, वो भी नौकरी करते हैं, वो भी काम करते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं, लेकिन आखिर हमको और आपको क्यों चुनकर उस हजारों लाखों की संख्या में से लगभग 150-200 लोगों के यहाँ बैठाया है? हमसे और आपसे परमेश्वर प्यार करता है। वो चाहता है कि हम और आप अपना जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए बिताएं, परमेश्वर की पवित्रता में होकर के जिए, परमेश्वर की आराधना कर सकें, क्योंकि परमेश्वर ने इसीलिए मनुष्य को बनाया था अपने स्वरूप और अपनी समानता में कि उसकी महिमा करे। लेकिन जब मनुष्य ने पाप किया वो संगति जो परमेश्वर मनुष्य के बीच में टूट गई, लेकिन परमेश्वर ने अपनी दया में होकर अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा कि मेरे और आपके बदले वो क्रूस पे बलिदान हुआ कि हम पुनः उस पर विश्वास करने के द्वारा जो हमारा परमेश्वर से टूटा हुआ संबंध था उसको हम पुनः जोड़ लें। हमारे और आपके लिए अवसर है। यदि आज आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वो परमेश्वर हाथ फैलाए हुए खड़ा है, वो अपनी बाहों में लेने के लिए तैयार है। हम अपने आप को संसार की उन चीजों से नकारें और परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप दें, क्योंकि हमको नहीं मालूम मेरा और आपका जीवन संसार में कितने दिन का है। यदि हम कल मर जाएं या अभी हम मर जाएं, परमेश्वर के सामने अगर हम खड़े होंगे, प्रभु से हमसे पूछेगा कि मैं अपने स्वर्ग में क्यों आने दूं, तो हमारा और आपका क्या जवाब होगा? क्या हम इस बात को कहने पाएंगे कि हाँ प्रभु, मैं संसार में इतने दिन रहा, इतने दिन तक तो मैं आपको नहीं जानता थी, इसलिए संसार की रीति से जीवन बिताया, लेकिन मैंने जब से आपके सुसमाचार को सुना, जब से आपको जाना, आपके लिए जीवन बिताया है। यदि हम ऐसा किए तो प्रभु स्वागत करने के लिए हमको और आपको तैयार है। इब्रानियों 12:14 में इस प्रकार लिखा है, सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी बनो जिसके बिना प्रभु को कोई देख नहीं पाएगा। हम कई बार परमेश्वर से तो बहुत मेल मिलाप करने के लिए बहुत कहते हैं, हमारा परमेश्वर से बहुत अच्छा संबंध है। कई बार हम घर में बैठे रहते हैं, चर्च की महत्वता को नहीं जानते हैं, अरे परमेश्वर तो देख रहा है, मैं अपने जीवन को परमेश्वर के सम्मुख बिता रहा हूँ। कई बार कलीसिया में आने का समय है, उस दिन जानबूझ के कई हम दूसरे कामों के लिए चले जाते हैं, परमेश्वर सबको देख रहा। यहाँ कहता है सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। जब सब मनुष्यों को मेल मिलाप की बात करता है तो यहाँ पे कलीसिया में परिवार की बात कर रहा है। क्या हम अपने इस परिवार से मिलने के लिए हम उत्सुक रहते हैं, या फिर यही कहते हैं मैं और मेरा परमेश्वर? नहीं, परमेश्वर का वचन कहता कि सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी बनो जिसके बिना उसे कोई देख नहीं पाएगा। अगर हम संसार में हैं, अपने प्रिय भाई बहनों से कलीसिया में एक दूसरे से प्रेम नहीं रख पाएंगे, तो हम चाहे जितना प्रयास करें, परमेश्वर का वचन कहता है हम उस परमेश्वर को देख नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम मुझसे सारे मन सारे प्राण सारी शक्ति से प्रेम करना, फिर क्या कहता है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। तो जब इन सारी बातों को कहता है वचन, तो हमको और आपको सोचना है क्या मेरा भाई क्या मेरी बहन जिसको हम मिलते हैं, क्या हम सच्चे अच्छे रीति से उससे मेल मिलाप का हमारा जीवन है या नहीं है। 16 पद में लिखा है, क्योंकि ये लिखा है तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर हमसे और आपसे पवित्रता की मांग करता है। क्या हम पवित्र अपने आप में बन सकते हैं या हम पवित्र बनने के लिए कुछ प्रयास कर सकते हैं? नहीं, हम अपने आप में उस पवित्र बनने के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो पाप किया जिसके कारण परमेश्वर का प्रकोप हमारे ऊपर था। लेकिन यीशु मसीह की पवित्रता की वजह से, यीशु मसीह की धार्मिकता की वजह से हम उस परमेश्वर के सामने पवित्र हो सकते हैं। क्या उस परमेश्वर को, क्या उस प्रभु को हमने और आपने अपना जीवन दिया है? वो परमेश्वर यही कहता है कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो। यदि हम उस परमेश्वर को अपना जीवन सौंप देंगे, यदि उस परमेश्वर के साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे, तो वो हमारी और आपकी मदद करेगा कि हम पवित्रता में बढ़ सकेंगे और एक दिन हम और आप उस परमेश्वर को देखने पाएंगे, जिस परमेश्वर का आज हमने सिर्फ महसूस किया, देखा, वचन में जाना। लेकिन एक दिन वो समय आएगा कि हम और आप उस प्रभु के सामने आमने सामने होंगे। कितनी आनंद और कितनी अद्भुत बात होगी। क्या हम उस बात के लिए, क्या उस घड़ी के लिए, क्या उस दिन के लिए हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, या फिर यही सोचते, अरे अभी तो मैं 20 साल का हो गया हूँ, 20 साल और नौकरी करूँगा, 40 साल को जाऊँ, उसके बाद फिर मर जाऊँगा, चला जाऊँगा। नहीं प्रिय भाई बहनों, ये सारी बातें संसार के लोग सोचते हैं जो प्रभु को नहीं जानते हैं। वो सिर्फ यही सोचते हैं अपने बच्चों को हमें सेटल करना, अपने बच्चों को हमें घर परिवार बना देना, तब मेरी मृत्यु हो। एक विश्वासी का जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए है, एक विश्वासी का जीवन परमेश्वर की आराधना के लिए है। हमको और आपको अपने जीवन के बारे में सोचना है। वो सारी चीजें जो परमेश्वर हमारी जिम्मेदारी दिया है, चाहे परिवार की हो, चाहे भौतिक हो, चाहे जो कुछ, उनको पूरा करना है। लेकिन उन सारे मध्य में सबसे बड़ी हमारी प्राथमिकता है कि हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को आदर दें, परमेश्वर की महिमा करें। 17 पद, तीसरी बात देखते हैं कि एक विश्वासी अपना जीवन परमेश्वर के भय में व्यतीत करेगा क्योंकि परमेश्वर सबका न्याय करेगा। 17 से 21, एक विश्वासी अपना जीवन परमेश्वर के भय में व्यतीत करेगा क्योंकि परमेश्वर सबका न्याय करेगा। कहता, जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात के प्रत्येक का न्याय उसके कामों के अनुसार करता है, तो तुम पृथ्वी पर रहने का अपना समय भय सहित व्यतीत करो। वो परमेश्वर जो न्यायी परमेश्वर है, वो हमारे और आपके जीवन को देख रहा है, हमसे वो आशा कर रहा है कि हम उसके भय में जीवन व्यतीत करें। एक विश्वासी का प्रथम कर्तव्य है कि वो अगर अपने आप को विश्वासी कहता है, यदि अपने आप को मसीही करता है, मसीही कहता है, तो वो अपना जीवन परमेश्वर के भय में व्यतीत करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर बिना पक्षपात के न्याय हमारे कामों के अनुसार करता है। वो परमेश्वर इस संसार के जज के समान नहीं है। वो परमेश्वर इस संसार के उन बड़े अधिकारियों के समान नहीं है कि आपका केस हारने वाले हैं, कुछ जाके घूस दे दो फिर आप जीत गए। वो परमेश्वर इस संसार के न्यायियों के समान नहीं है। वो परमेश्वर सच्चा न्यायी है। वो हर एक के जीवन को देख रहा है, वो हर एक के जीवन के बारे में उसको सब कुछ पता है। हम और आप इस संसार के न्यायियों के सामने तो झुटला सकते हैं, अपने आप को पैसा देकर या घूस देकर हम बचा सकते हैं, लेकिन उस परमेश्वर के सामने हम अपने आप को बचा नहीं सकते हैं। इसलिए हमको और आपको अपना जीवन उसके भय में व्यतीत करना है, क्योंकि वो एक दिन सबका न्याय करेगा। क्या हम उस दिन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं? हम सब ये आशा लगाए हैं कि यीशु मसीह आएगा, हम उसके साथ जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह आएगा, हमको अपने साथ ले जाएगा, लेकिन तुरंत अंदर नहीं पहुंचाएगा, सबको खड़ा करेगा, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे गैर विश्वासी हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके सामने हर एक जन खड़ा होगा, अपने जीवन का लेखा देगा। क्या हम इस बात को जानते हैं कि जो परमेश्वर हमसे प्रेम किया, वो मेरे आपके लिए संसार में आ गया, मेरे और आपके बदले क्रूस पे बलिदान हो गया, मेरे और आपके लिए वो गाड़ा गया, सब कुछ दुख सहा, निंदा अपमान सहा, उसके मुंह पे थूका गया। लेकिन वो प्रेमी है, लेकिन उसके साथ साथ इस बात को हमको और आपको ध्यान रखना है कि न्यायी है। क्या हम उसके प्रेम के साथ साथ उसके न्याय को हम याद रखते हैं? क्या इस बात को जानते हैं कि एक दिन हमको और आपको अपने जीवन का लेखा उसके सामने देना होगा? क्या हम इस बात के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं? क्या इस बात के लिए आज आप तैयार हैं कि यदि प्रभु आज आ जाए या प्रभु आज अपने पास आपको बुला ले, तो उसके साथ अपने जीवन का लेखा देने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस बात को सोचते हैं कि यीशु मसीह अपने स्वर्ग में आपको आमंत्रित करेगा? क्या इस बात को सोचते हैं कि यीशु मसीह हमको स्वर्ग में जगह देगा? हमको और आपको अपने जीवन के बारे में सोचना है। हमको और आपको उस परमेश्वर के न्याय के लिए तैयार रखना है। क्योंकि यदि इस संसार में हम उसके भय में जीवन नहीं व्यतीत करेंगे तो ये संसार ऐसा लुभावना है, इस संसार ऐसा आकर्षित करने वाला है, चाहे हम जिस उम्र के क्यों ना हो, हर एक परिस्थितियों में हर एक जन को वो शैतान खींच सकता है। इसलिए हमको और आपको सचेत रहना है। और इसी अध्याय के पहला पत्रस 5:7 में लिखा है कि अपनी समस्त चिंता उस पर डाल दो। ये पूरी पत्री का एक मुख्य विषय है कि समस्त चिंता डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। लेकिन जैसे 8 को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है संयमी और सचेत रहो क्योंकि तुम्हारा शत्रु शैतान गरजने वाले सिंह की भांति इस ताक में है कि किसको किस समय फाड़ खाए। 18 में क्योंकि तुम जानते हो कि उस निकम्मे चाल चलन से जो तुम्हें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ तुम्हारा छुटकारा सोने या चांदी जैसे नाशवान वस्तुओं से नहीं। क्योंकि तुम जानते हो हमको और आपको परमेश्वर ने अपना वचन दिया है। हम और आप इस बात को जानते हैं कि जो हम और आप यहाँ पर बैठे हैं ये हमारा छुटकारा किसी सोने चांदी या जैसे बहुमूल्य वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है। हमको और आपको बचाने के लिए यीशु मसीह ने अपने बहुमूल्य लहू को बहा दिया है, अपने उस कीमती लहू को क्रूस से बहा दिया। मेरे और आपके लिए उसने दुख को सहा, मेरे और आपके लिए उसने दर्द को सहा, मेरे और आपके लिए निंदा अपमान को सहा। उस लहू की हम संसार में कीमत नहीं लगा सकते हैं। प्रिय भाई बहनों, वो परमेश्वर मेरे और आपको अपने लहू से खरीदा है, अपने लहू के द्वारा हमको और आपको छुटकारा दिया है। और कहता है कि तुम जानते हो कि उस निकम्मे चाल चलन से जो तुम्हें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ। क्या क्या है हमारे पूर्वजों से प्राप्त हुआ? हम अपने जीवन के बारे में खुद सोच सकते हैं। मैं तो जानता हूँ मेरे परिवार के कोई प्रभु को नहीं जानता था। जो कुछ मैं बड़े होने तक सीखा, जो कुछ जाना, संसार के लोग जो कर रहे थे वही मैं भी करता था। संसार के लोग जैसा जीवन व्यतीत करते थे वही, क्योंकि हमारे पूर्वजों की परंपरा थी, हमारे पूर्वजों की यही थी कि जैसा सब कर रहे वैसा करो। लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को जान गया, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह पे आपने विश्वास कर लिया, क्या उस दिन आपके जीवन बदल गया कि हमारे पूर्वजों का चाल चलन, हमारा जो कुछ धरोहर क्या मिली है? परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा छुटकारा सोने या चांदी जैसे नाशवान वस्तुओं से नहीं। इस संसार की कोई भी चीजें, कोई भी वस्तु अगर उस कीमत को चुकाने के लाती वो पर्याप्त न होती। क्योंकि आप देखते हैं, चाहे पुराने नियम को पढ़ लीजिए, चाहे नए नियम में इब्रानियों में पढ़ लीजिए कि हर एक व्यक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति पाप करता था उसके पाप के लिए बलिदान चढ़ाया जाता था, वो हमेशा हमेशा के लिए नहीं होता था, कुछ समय के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, फिर वो बलिदान। और ये सब हम गांव समाज भी जानते हैं, हम ऐसी कई पृष्ठभूमि से हैं कि जिन घरों में बलिदान चढ़ाया जाता था 1 के बाद फिर चढ़ाओ नहीं तो तुम्हारा ये हो जाएगा, 2 के बाद नहीं करोगे तुम्हारा ये हो जाएगा। लेकिन उससे पर्याप्त छुटकारा हमें नहीं मिलता था। लेकिन यीशु मसीह का बलिदान, यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का क्रूस पे बलिदान किया जाना, यीशु मसीह के उस दर्द दुख के द्वारा जो मेरे और आपके लिए एक ही बार वो बलिदान होने के द्वारा हमेशा हमेशा के लिए संपूर्ण कीमत को, सारी कीमत को चुका दिया। अब हमें किसी प्रकार बलिदान या किसी प्रकार ऐसी चीजों को नहीं करने की जरूरत है। क्यों? यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए सब कुछ कर दिया और हमको और आपको उसके भय में अपने जीवन को व्यतीत करना है। क्योंकि वो एक दिन आने वाला है, वो हमारा और आपका न्याय करेगा और हमको और आपको उसके सामने खड़े होने के लिए तैयार रहना है। 19 कहता है परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। वो तो सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ही जाना गया था परंतु तुम्हारे लिए इन अंतिम दिनों में प्रकट हुआ। तुम उसके द्वारा परमेश्वर में विश्वासी हो। परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया और महिमा दी, इसलिए तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी आशा परमेश्वर पर है। वो परमेश्वर मेरे और आपके लिए संसार में आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। वो जिंदा परमेश्वर है, उसने हमको और आपको आशा दी है। और इसी बात के लिए पत्रस इस बात को याद दिलाना चाहता है उन तितर बितर लोगों को जो विश्वास में इधर उधर सताव कारण भटक गए थे। और आज हमसे भी यही कहना चाहता है कि वो यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का बलिदान मेरे और आपके लिए पर्याप्त है। क्या इस बात पर हम भरोसा करते हैं? क्या हम इस बात को जानते हैं? यदि इस बात को हम जानते हैं कि यीशु मसीह का ही बलिदान मेरे पापों के लिए पर्याप्त है, तो हम अपने पापों से क्षमा मांगे, हम अपने जीवन में अपने जीवन को परमेश्वर के सम्मुख समर्पित कर दें और कहें कि प्रभु ये जीवन जो आपने दिया है, जितना भी बाकी बचा है, इसको मैं आपकी महिमा के लिए आपके भय में होकर व्यतीत करना चाहता हूँ, ये जीवन को आपके लिए देना चाहता हूँ। बहुत से भाई लोग होंगे शायद आज पहली बार सुन रहे हो, आप ये कह सकते हैं आपके लिए अवसर है कि हाँ प्रभु, अभी तक मैं आपके उस वचन को नहीं जानता था, अभी तक मैं आपको नहीं जानता था, लेकिन इस कारण मैं अपना जीवन संसार की रीति के अनुसार व्यतीत करता था, लेकिन आज मैं जान गया हूँ, आज से मैं अपना जीवन आपके हाथों में सौंपना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन को ग्रहण करने के लिए तैयार है। क्या आपको अपना जीवन उसको देना चाहते हैं? और यही बात तो यहाँ 21 पद में कहता है कि तुम उसके द्वारा परमेश्वर में विश्वासी हो, परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया और महिमा दी, इसलिए तुम्हारा विश्वास आशा परमेश्वर पर है। संसार में कोई ऐसा नहीं है जो मरने के बाद जी उठा हो। हमारा और आपका प्रभु वो मृतकों में से जी उठा, उसने हमें और आपको जीवन देने की आशा दी है। क्या उस आशा में हम बने हैं? क्या उस बात को याद करते हुए हम उस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि यीशु एक दिन आएगा और हमको और आपको ले जाएगा? क्या हम और आप उस दिन के लिए तैयार हैं? क्या हम और आप इस बात को सोचते हुए प्रभु से कहते हैं, हाँ प्रभु मेरी आप सहायता करिए कि जब तक इस संसार में हैं, चाहे समाज के लोग कुछ भी कहें, चाहे रिश्तेदार कुछ भी कहें, चाहे, लेकिन हम और आप आपकी महिमा के लिए जीना चाहते हैं। क्या इस बात को हम कहने के लिए तैयार हैं? यदि हम इस बात को सोचते हैं तो आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें और प्रभु से सहायता मांगे कि वो हमारी और आपकी सहायता करे कि जो हमारा जीवन इस संसार में है, हमको नहीं मालूम कितने दिन, कितने महीने, कितने वर्ष, लेकिन जितना भी दिन है वो हम परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके भय में होकर उसकी आराधना के लिए व्यतीत करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे।